Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
Namaskar, Karobari Khabron ke saath Market Mantra aapka swagat karta hai. Market Mantra ke Ravivar ke sanskaran mein hum mutual funds se jude aapke sawalon ke jawab denge. Sawal poochne ke liye aap in numberon par hame phone mila sakte hain. Ye numbers hain 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी, बहुत धन्यवाद
जी. चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस.
फर्स्ट द हेडलाइंस. Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays foundation stone of development projects worth over 6,300 crore rupees in Assam. PM says Northeast has a very big role in India's development. India will become a $30 trillion economy by 2047, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. And US President Donald Trump threatens 50 to 100% tariffs on China. China says sanctions would complicate negotiations.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी. वहीं चीन ने कहा कि प्रतिबंधों से स्थिति जटिल होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के मिशन पर है और विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम कर रहा है. उन्होंने आज दोपहर गोलाघाट जिले में भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन किया. जैव इथेनॉल संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने गहरे जल ऊर्जा संसाधनों का दोहन करेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा. श्री मोदी ने कहा कि ये जैव इथेनॉल संयंत्र उस लक्ष्य की ओर एक कदम है. प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल है. श्री मोदी ने रिफाइनरी में एक पॉलीप्रोपिनाइल इकाई की आधारशिला भी रखी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, प्रीतम. प्रीतम, अपना सवाल पूछिए.
जी नमस्कार, मार्केट मुझे ये पता करना था कि मुद्रास्फीति पिछले महीने अगस्त में 1.5% से नीचे थी और अब 2% से ऊपर जा रही है. तो ये जीएसटी का मतलब कुछ बेनिफिट तो मुझे लगता नहीं आगे मिलेगा. हिसाब से तो आगे 3% के आसपास जा सकती है. तो मतलब ये क्या वजह है?
मेरी अनुमति, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी सवाल हैं आज संडे के दिन मार्केट मंत्र में केवल म्यूचुअल फंड से ही जुड़े हुए पूछ रहे हैं कृपया करके. हम लोगों ने जो मार्केट मंत्र का जो प्रोग्राम है उसमें शनिवार और सोमवार को ये डेडिकेटेड दिन है जिसमें आप आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं. वहीं आप दूसरे सवाल की ओर चलते हैं. दिल्ली से योगेश का कॉल है. Yogesh, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Hi. So my question is that we use mutual funds for our investments, and for filing tax return, which is last date today or tomorrow, like in equity, in stocks, we give them a profit and loss statement to our CA or whoever is filing with ITR. But in case of mutual fund, how do we like create a consolidated statement for profit and loss? And I'm using MF Central. Is there any facility in MF Central? I couldn't spot that yet.
Yes, I think it should be possible to download a capital gains account, a capital gains tax statement from MF Central. But if you're finding it difficult to find it in MF Central, then you can also visit the websites of CAMS or K FinTech, the two registrar and transfer agents of the industry. And you get a very nice, cohesive, all-inclusive statement for the entire financial year, which you can download from these resources. So you can go there. There's an investor services section over there. You know, choose the capital gains statement, put in your email address and some details that they ask. And, you know, within minutes, the statement will be sent across over your email address, which you can straight away use for your tax filing.
वैभव, चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, जो कि दिल्ली से ही हैं. इनका नाम है जतिन. जतिन, अपना सवाल पूछिए. जतिन, आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, आवाज आ रही है.
जी जी, अपना सवाल पूछिए.
सर, मैं दो तीन सवाल हैं. जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड में मैं इसी हफ्ते में पेमेंट लगाना चाहता हूँ, और मेरी मेच्योर हो चुकी है कुछ एफडियां. तो ये मैं चाहता हूँ कि ये आप मुझे बताएं, आसान तरीका क्या है, क्या बैंक के थ्रू ही मैं इसको लगा पाऊँ? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या हम जो गोल्ड के बिस्किट खरीदते हैं, इस पे भी जीएसटी लगता है, वो भी घटेगा क्या, इसके बारे में बताएं? और तीसरा एक छोटा सा सवाल ये है, जो सामान दुकानदारों ने अपने गोदाम में रख रखा है, उनके ऊपर जीएसटी घटेगी कि नहीं घटेगी, कैसे वो बेचेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा राय दीजिए. धन्यवाद.
जी, पहला सवाल आपका, आप निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, आप कैसे शुरुआत करें? तो बैंक के जरिए भी करना एक विकल्प है. अगर आप थोड़ा सा हैंड होल्डिंग चाहते हैं, कोई आप कंफर्टेबल ज़्यादा हैं कि कोई आपको हैंड होल्डिंग दे, कोई आपके आपके लिए इन्वेस्टमेंट कराने में आपकी सहायता करे, तो आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं. बस ध्यान ये रखिए कि आपको वो कौन सा फंड बेच रहे हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको म्यूचुअल फंड बताकर यूलिप बेच दी जाती है, उससे आप बचिए. अदरवाइज आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं. और अगर आप खुद करने में सक्षम हैं, आप ऑनलाइन इन्वेस्टिंग, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कर इन्वेस्टमेंट्स अगर करने में कंफर्टेबल हैं, ऑनलाइन बैंकिंग आप करने में कंफर्टेबल रहते हैं जनरली, तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां पर जाकर आप विद इन अ फ्यू मिनट्स अपना अकाउंट सेटअप कर कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस के थ्रू आप अपना KYC पूरा कर सकते हैं और अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी डाल सकते हैं.
एब्सोल्युटली. एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल आवर लिसनर्स दैट संडे इज द डेडिकेटेड डे फॉर क्वेश्चंस ऑन म्यूचुअल फंड्स, एंड ऑन सैटरडेज एंड मंडेज यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग एनी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल मैटर्स. Welcome back. This is Market Mantra. You're tuned into Akashvani, and today's Market Mantra is dedicated for questions and queries related to mutual funds. We have our expert today, Ashutosh Gupta. And now, before we take more further calls, let's go on to our headline story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India will become a nation of $30 trillion economy by 2047. Mr. Goyal said this during an interactive session at the annual conclave of a private media organization in New Delhi today. Stressing on inflation being under control under Prime Minister Narendra Modi's leadership, the minister said that the cost controlling was the government's priority when it came to power in 2014. Mr. Goyal said that the Reserve Bank of India was mandated to continuously monitor India's fiscal and monetary policy. The minister also highlighted the government's effort to support micro, small and medium enterprises, MSMEs. He underlined that the next generation GST reforms have reduced hassle and simplified the taxation system. Mr. Goyal further stressed that the introduction of GST in 2017 was the biggest transformation post-independence that helped to make the system free of corruption, middlemen and paperwork.
जी वैभव, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं. स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी. इस महीने की तारीख को उनका यह सपना तब पूरा हुआ जब जीएसटी परिषद ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में सुधार किया। आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सुधारों पर एक नजर डालते हैं।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जिन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, इस महीने की 22 तारीख से वह कर से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अब बीमा धारकों को केवल बेस प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इस क्षेत्र में टैक्स को समाप्त करने से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेनावृत्त लोगों को बड़ा लाभ होगा, जो अक्सर उच्च प्रीमियम के कारण स्वास्थ्य बीमा लेने से हिचकिचाते हैं। मीडिया से बात करते हुए बेंगलुरु के निवासी हेमंत राय सिंघानी ने बताया कि
पहले प्रीमियम थे, उसके ऊपर आप जीएसटी पे करो, उससे पहले मैं अपनी सैलरी पे भी टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ना मेरे को डबल टैक्सेशन था, तो इट्स गुड।
समर सिंह के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आशुतोष जी, I would like to know how important are these massive GST reforms that have been brought in by the incumbent Narendra Modi government? How all the taxations systems that have changed now will benefit the ease of doing business as well as the ease of doing living or ease of living in the country by reducing so many tax rates on so many things that are used in everyday life by the people?
Oh, these are very significant. Every step matters. And ever since the GST was informed, this is perhaps the most significant reform in the overall GST tax structure that has been seen.
True.
If you look at it broadly, any taxation policy has broadly two kind of objectives. One is to encourage certain behaviors and discourage others. And of course, you know, the primary goal of collecting taxes, for use for the development of the country. Now, if we specifically from a personal finance perspective, if we look at insurance and healthcare, where GST has been reduced to zero, I think it will give a great boost. It's a good, great fillip to the insurance sector. It will encourage more people to buy insurance. Insurance will become more affordable. And the first step in any personal finance plan is to get yourself insured. So I think this is a great step. And more broadly in other dimensions of the economy as well, reduction of GST will further give a fillip to the consumption. And I think will give a great impetus to our objective of becoming the third largest economy in times to come.
And truly, the government knows that it will forego 1 lakh crore of revenue due to these reductions in the GST taxations. And yet it believes that the consumption of the country and the investments that it will spur more in the future will recover all this amount. I'll just repeat the numbers once again for all our dear listeners. It's 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464. Welcome back to Market Mantra. Union Minister for Finance Nirmala Sitharaman has said that the GST 2.0 was introduced before festive seasons like Deepavali, Durga Puja, Navaratri and will benefit every Indian, delivering her remarks at a joint conclave of Trade and Industries Association at Chennai today. She said that almost for a majority of 99% of the goods, GST has been reduced from 12% to 5%.
जी, वैभव विभाष जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। विभाष, अपना सवाल पूछे।
हाय, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग।
माय क्वेश्चन इज दैट सपोज इफ आई एम लाइक अ बिगिनर, सो व्हाट आर द स्टेप दैट आई कैन फॉलो फॉर लाइक टू फाइंडिंग अ गुड म्यूचुअल फंड?
Sure, to start with, I would say that for a beginner, just keep things simple. Either start with an index fund because it takes away a lot of stress of choosing a fund. Just pick up one or two funds which invest in the stocks of Nifty 50 index and start with a small SIP. Run it for at least 6 to 8 months. You'll get more familiar. You'll get more knowledgeable about the way the mutual funds work. Try it out the full cycle. Make an investment and also try withdrawing, redeeming your money and see the money hitting your bank account. So once you do this, the full circle, you will become more knowledgeable. You will gain more confidence and that will prepare you to think more seriously and think more long term about your overall investing with mutual funds.
जी, दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, विमला। विमला जी, अपना सवाल पूछिए।
जी, एक्चुअली उनके बिहाफ पे वो सवाल नहीं पूछ पाएंगे, तो उनके बिहाफ पे मैं पूछ रहा हूँ। उनकी एज थोड़ी 55 के आसपास है और वो हाउस वाइफ है।
जी, आप अपना नाम बताएं।
जी, मेरा नाम योगेश शर्मा है।
जी योगेश, जी, अपना सवाल पूछे।
ये उनके बिहाफ पे है, उनके पास कुछ म्यूचुअल फंड थे, तो पहले वो जितना भी उनका पैसा फिक्स इनकम एलोकेशन में था, वो पीपीएफ था या एनएससी था, तो उसको हमने कन्वर्ट करके म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट किया और किसी तरीके से उनको हमने कन्वेंस किया इसके लिए। पर दिक्कत एक छोटी सी ये थी कि लिक्विड फंड में पहले हमने पैसे डाला था, फिर लिक्विड फंड में पैसा रोज रात को बढ़ जाता था, तो वो रोज बढ़ता था तो रोज चेक कर लेती थी। पर शॉर्ट टर्म डेट फंड में जब से हमने डाला है तो ऑन पेपर तो रिटर्न शॉर्ट टर्म डेट फंड ज्यादा दिखाता है आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड, पर जब हम देखते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं अभी, यानी कि उसमें कुछ टाइम से रिटर्न आया ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी कमी हुआ है उल्टा वैसा काफी हद तक। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, मतलब कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं?
जी देखिए, दो अलग प्रकार के फंड हैं। लिक्विड फंड में वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन उसी के मुताबिक उनमें रिटर्न भी बहुत कम होते हैं। तो आप लिक्विड फंड अगर देखेंगे तो आपकी इमरजेंसी नीड्स, शॉर्ट टर्म पैसे को पार्किंग नीड्स, इन सब के लिए बनाए गए हैं। लिक्विड फंड से आप बहुत अच्छे रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते, वो आपकी कैपिटल सेफ सुरक्षित लगते हैं। जैसे कि आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, उसी तरह से आप म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड में रख सकते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे देते हैं, कम वॉलेटिलिटी, नेग्लिजिबल उतार चढ़ाव के साथ। और जैसा आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिन और दिन वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही है, बहुत कम ऐसा होता है, रेयर ओकेशन होती है जब कभी लिक्विड फंड में गिरावट देखी जाए। वहीं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आप मानिए कि उनसे एक स्टेप ऊपर हैं, दोनों ही रिटर्न में भी रिस्क में भी, तो वो आपको रिटर्न भी उनसे बेहतर देंगे लेकिन उनमें थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो दिन पर दिन जैसे लिक्विड फंड सिर्फ आपको बढ़ोतरी ही दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी। लेकिन आप घबराएं नहीं, अगर आपका फंड का चुनाव अच्छा है, ठीक ठाक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में आप हैं, तो आप के लिए वो लाभदायक ही साबित होंगे। मेरे ख्याल अगर आप एक अच्छे लिक्विड शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्टेड हैं तो पिछले एक साल में उनके करीब 8-8.5% रिटर्न जरूर रहे हैं, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के हिसाब से एक बढ़िया रिटर्न है। तो आप ज्यादा चिंता ना करें और लिक्विड फंड से उसको डायरेक्टली कंपेयर ना करें, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के फंड्स हैं।
जुड़ गए हैं आप मार्केट मंत्र से, एक बार फिर लिए चलते हैं आपको सीधा भोपाल से शंकर जुड़ रहे हैं। शंकर, आप अपना सवाल पूछिए।
मार्केट मंत्र टीम नमस्ते, म्यूचुअल फंड टीम वालों को बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन, उनसे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर मेरा सवाल है, ये कभी लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने कभी बीट किया इक्विटी को? बिकॉज अभी गोल्ड बहुत चल रहा है लेकिन वो एक दो साल में भागा है, बट इफ यू लुक एट 5-10 ईयर परफॉर्मेंस, इज इट, व्हाट इज इन योर एक्सपीरियंस, हैज इक्विटी ऑलवेज बीटन गोल्ड, आई मीन स्पेशली थ्रू फंड? और दूसरा सवाल है, इफ we have now GST reform, we have now taxation, 5 lakhs तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला, तो बहुत पैसा फ्री होगा, will it be flowing through equity fund into equity market? Will it not be pushing up again PE prices too high and making the stock again higher and higher and higher? Is it good for economy? How do you rate this particular phenomenon of taxation relief and GST rationalization from equity point of view? Thank you.
Sure. So to answer your first question, whether conventionally or historically gold has beaten equity. So conventionally, I would say that if you look at longer term, if you remove the last 5-7 years of gold performance, then generally speaking, you would not expect gold to outdo the equity the way it has done in this last 4-5 years. Generally, historically, you see that whenever there is a state of turmoil in the economy or in the global geopolitics, gold tends to do better, because gold being a safe haven, during turmoil people prefer to park their money in gold. So gold has been historically, it has performed in bursts. Whenever there is fear or panic in the markets, then suddenly gold starts to perform well. But over a longer term, the performance of the gold normalizes, and equity being the real wealth generator is expected to do well. But yes, the tables have somewhat turned in the last 4-5 years, and partly the reason is the same, because you know, this has been the time post COVID that you know, the global economic dynamics have been generally in a state of turmoil, lots of things happening, and gold has outdid equity on more occasions in these years than not. And also of late, a lot of central banks have been buying and hoarding gold, and that has also, you know, caused their prices to rise. But you know, gold is an unproductive asset, so will this continue is a $1 million question. Will this trend hold for the next 10-20 years is something which is doubtful, to be honest, in my mind. So I would say for a long-term growth generating portfolio, equity should still be your de facto choice, and you may have a little bit of gold in your portfolio. Now, will equity inflows push the equity markets up? See, it's a confluence of a lot of factors, right? Of course, more inflows going into the market will have a tendency to push up the markets. But remember that the GST reforms, more consumption, they would also tend to have a positive and a favorable impact on the earnings of the companies. So when the prices go up, so do the bottom lines of the companies. And therefore, you know, there is both kind of effects on valuations and metrics like P/E ratio, which you mentioned. So I would say that don't worry too much. Let things play out. And nevertheless, equity, I believe, would still be the best bet to generate wealth-creating returns in the long term.
जी आशुतोष, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि कोलकाता से हमें आ रहा है. हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिमेश. अनिमेश, अपना सवाल पूछिए.
गुड इवनिंग एवरीबॉडी.
गुड इवनिंग.
आई हैव टू क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार विल न्यू जीएसटी रेजिम इन्फ्लुएंस म्यूचुअल फंड. And my second question is, will this new GST regime affect gold bond in any way?
Okay, so you know, answering your question about how the new GST will impact on mutual funds, well, I would say that mutual funds or their investment management teams would be carefully evaluating the impact of GST, you know, which sectors would tend to benefit more, and they would look at their portfolios, which companies they are investing in, you know, how do they want to reposition their portfolios in the context of how GST reforms are panning out. So, you know, that way, I think that would be the immediate top of the mind agenda for any investment manager at this point in time because of the new GST.
And we have a next caller from Bengaluru. Subroto is joining us on Market Mantra. Welcome to the program. Please ask your question.
Good evening to Market Mantra team.
Good evening.
My question is regarding NPS. I have searched on the internet that after attaining the 60 years, I can withdraw the 60% whatever amount will be amassed. I can withdraw the only 60% and 40% from what, that 40% I can buy an annuity income. And what is that? And compare with it, senior citizen savings scheme. Then.
Yes, so you are right that in NPS, at the vesting age, at the age of retirement, you can withdraw up to 60% in lump sum. And recently, NPS also provided you the option to make this withdrawal in parts. So they provided a facility which is an equivalent of a systematic withdrawal plan in a mutual fund where you can partially withdraw money and do that through a systematic route. But yes, you have to necessarily, at this point in time, the rules mandate that you have to necessarily use the remaining 40% of the money to buy an annuity from which you can derive a regular income. Because NPS, by its roots, is a retirement product. It's an accumulation vehicle for your retirement. And once you hit retirement, I think the underlying thinking of PFRDA is that you should not just take all the money out and if that money is not put to use thoughtfully to generate regular income, then you know it may just nullify the whole purpose of NPS. So that's why 40% annuity is a mandatory feature at this point in time.
Moving on to our next story, US President Donald Trump has urged all NATO countries to join in and stop buying Russian oil as he threatened 50 to 100% tariffs on China because of its ties with Russia, saying the tariffs would be lifted once the Ukraine war ends. Treasury Secretary Scott Bessent and US Trade Representative Jameson Greer released a statement calling on partner nations to enact tariffs if they were truly committed to ending the Ukraine war. The Trump administration has also been pressurizing European nations and G7 allies to place tariffs on countries buying Russian energy. Moving on to our next story, China has hit out at the US over President Donald Trump's recent call for 50 to 100% tariffs on Beijing for its close ties with Russia. While speaking at a news conference in Slovenia, capital Ljubljana on Saturday, Chinese Foreign Minister Wang Yi said wars cannot solve problems and that sanctions would only complicate them. And now we move over to the final headlines for the show before we close. India is on a mission of becoming Atmanirbhar in energy sector and is reducing dependence on foreign fuel, says Prime Minister Narendra Modi. India will become a $30 trillion economy by 2047, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. And US President Donald Trump threatens 50 to 100% tariffs on China. China says sanctions would complicate negotiations. Thank you so much for joining in. Thank you, Ashutosh. And see you again in Market Mantra.
Thank you.
Market Mantra.